الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عثه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. گزشتہ سورہ جو گزری اس میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ خاص طور پر کیا گیا, نام بھی اس کا سورہ انبیاء ہے, اور انبیاء علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں اور اس کا جو تعلق ہے, ان کا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے, اس کو واضح کیا گیا. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو دینی لحاظ سے کسی خصوصیت میں ممتاز ہوتا ہے تو اس سے حسن ظن پیدا ہوتا ہے اور حسن ظن میں بعض و غلو پیدا ہو جاتا ہے, اور انبیاء علیہ السلام مختلف قوموں میں آئے, مختلف زمانوں میں آئے, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو وحی کے ذریعے سے ان کو ہدایات عطا فرمائی, اس پر انہوں نے عمل کیا. وہ اپنے عمل کے لحاظ سے, اپنی ذاتی عمل کے لحاظ سے بھی بہت اعلیٰ معیار پر تھے, اللہ سے ڈرنے والے اور ہر وقت اس بات کی فکر رکھنے والے کہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو اور ان کی پسند کے خلاف نہ ہو, اور جو نیکی کی جو اعلیٰ قسم ہو سکتی ہے, اعلیٰ درجہ ہو سکتا ہے, وہ انہیں پایا جاتا تھا. تو جو لوگ उनसे मुताल्लिक हो जाते थे, उनके कायल हो जाते थे, तो उनकी अजमत का लिहाज करते थे। लेकिन फिर बाद में आने वाली नस्लें वो अपने ख्यालात से बात कहीं से कहीं पहुंचा देती, और अपने नबी को वो उस मकाम से ऊंचा कर पहुंचा देते थे जो अल्लाह ताला ने उनका मकाम रखा है। अल्लाह ताला ने उनको इंसान रखते हुए उन पर जिम्मेदारी डाली, तो उनमें दोनों पहलू थे होते हैं नबी में, एक तो नबी होने का पहलू और दूसरे इंसान होने का पहलू, और इन दोनों पहलुओं से उनको गुजरना होता है। इंसान होने के पहलू से तो उनको सारी चीज़ें पेश आती हैं जो दूसरे इंसानों को पेश आती हैं, उसमें इस्तेसना नहीं होता। बीमारी भी होती है, दुश्मनी भी लोगों से होती है, दोस्ती भी होती है, औलाद भी होती है, और औलाद से मोहब्बत भी होती है, और सारी चीज़ें जो इंसानों को पेश आती हैं सब उनको पेश आती हैं, यकसा हालत नहीं रहती। बिल्कुल इंसान उसमें बिल्कुल इंसान होते हैं, और नबूवत के लिहाज से ये उनके पास उन पर मजीद जिम्मेदारी होती है कि इंसान रहते हुए वो नबूवत के फरीदे को अंजाम दें। और नबूवत का फरीदा क्या है कि लोगों को इस्लाह की तरफ, लोगों की रहनुमाई करें और उनको अल्लाह ताला के पैगाम पहुँचाएँ, जो वही के ज़रिए से उनके पास आता रहता है वो पैगाम उनको पहुँचाएँ, और लोगों को ईमान पर आमादा करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो मौजज़ात भी अल्लाह ताला उनको अता फरमाता, वो मौजज़ा अल्लाह ताला का अता करदा होता है। इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने आसा अता फरमाया और वो मौजज़े की सूरत उनके सामने आया तो घबरा के भागे, वो समझ कर कि ये तो बहुत सांप है, अजदहा है, अल्लाह ताला का डरो नहीं, इसको उठा लो। उठा लिया तो वो डंडा हो गया, वो उनका डंडा था, तो अल्लाह के हुक्म से उसमें खसूसियत पैदा हो जाती है और अल्लाह के हुक्म से खसूसियत उसके ख़त्म हो जाती है, तो उसका ताल्लुक अल्लाह ताला के खुद उससे फैसले से होता है। वो इसलिए होते हैं मौजज़ात कि लोग ये समझें कि ये जो बात कह रहे हैं ये बात इंसान की बनाई हुई नहीं है, ये ऊपर से आई है। अगर इंसान की बनाई हुई होती तो हम कर सकते, हम में से कोई आदमी नहीं कर सकता। इसीलिए आप देखेंगे कि आमतौर पर वो मौजज़ात ऐसे मौजज़ात दिए गए नबियों को कि जो उनकी कौम के लिहाज से समझ आने वाले थे। मसलन हदीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में टिब ने बहुत तरक्की की थी, ऐसी ऐसी दवाएँ जादू होती थी, इलाज में बहुत तरक्की हो गई थी कि किस मरस को किस तरह दवा दी जाए, किस तरह फ़ायदा हो, तो उनको दिखाया गया कि हाथ फेरा उन्होंने और शिफा हो गई। जाहिर है कि देखने वाला समझ लेगा कि ये हमें बड़े से बड़ा हकीम और बड़े से बड़ा तबीब भी ये नहीं कर सकता, उसको समझते हैं। अगर वो टिब की इतनी तरक्की न हुई होती तो कहते कि भाई तो वहाँ समझ में नहीं आता। इस तरह आप देखेंगे कि और जो मौजूदात हैं वो उस कौम को जिस पहलू में बहुत ज़्यादा वाकफियत होती है उस पहलू के लिहाज से मौजूदा, तो इसीलिए आप देखिए कि अरबों के पास जो मौजूदा आया कुरान मजीद का आया, इसलिए एक अरब फसाहत बलागत में बहुत बढ़े हुए थे और उनकी शायरी के अंदर बहुत उन्होंने इम्तियाज पैदा किया था और बड़ा उनको उसका ज़ौक़ पैदा हो गया था अच्छे कलाम और मामूली कलाम के दरमियान में। उनके सामने आया तो हैरान नहीं है, क्या है ये तो शायरी से भी ऊंची चीज़ है, हम बलागत को जितना जानते हैं ये तो उससे आगे की चीज़ है। इसीलिए कुरान को सुनते ही मुतासिर हो जाते थे, ये तो ये इंसान के बस की चीज़ नहीं मालूम होती, और मुकाबले का भी उन्होंने इरादा नहीं किया, इसलिए समझते थे कि हम नहीं कर सकते ऐसा। तो इस चीज़ में नबी मुमताज़ होता है इंसानों से, तो दो से नबी के अंदर दो पहलू हो जाते हैं, एक नबी होने का पहलू, दूसरे इंसान होने का पहलू। तो इंसानी हालात जो सब उसी तरह गुजरते हैं जिस तरह दूसरों को गुजरते हैं। अब उसमें ये होता है, अल्लाह ताला ये कहता है कि तुम इंसान रहते हुए सही जिंदगी गुजारो। हमारे जो जिंदगी हम तुमसे तुमको बता रहे हैं उस तरह की नहीं तुम गुजारो, और हमारा कहना मानो। और ये नबी जो कहते हैं ये हमारी तरफ से कहते हैं, इनकी बात इस तरह मानो, हमारी बात समझो। लोगों ने ये किया कि, और जिन लोगों ने माना उनके बाद में आने वाले लोगों ने उनको और बढ़ा दिया नबी को, नबी को खुदा के तक पहुंचा दिया और अपने नबी को लेके बैठ गए। उसमें आपने पढ़ा ये गुज़श्ता सूरह में कि अल्लाह ताला फरमाता है सब एक सिलसिले के लोग हैं, इनमें फ़र्क नहीं किया जा सकता। और इसी कुरान में है लान फर्द को बना हदिम मिन हूँ कि हम तफरीक नहीं करते, सब नबी हैं, सबके पास वही आती थी और सबका मकाम नबूवत का मकाम है। तो लेकिन लोगों ने क्या किया, हम अपने नबी को मानते हैं दूसरे को नबी नहीं मानते। तो अल्लाह ताला ने तो सबको एक लाइन सबको एक ही सिलसिले का रखा और लोगों ने अलग अलग बांट लिया उनको। तो गुज़श्ता सूरह में नबियों के सिलसिले में वजाहत की गई है, बताया गया है कि नबी भी इंसान की हैसियत से बहुत सी मुश्किलात से गुजरते हैं, बहुत सी तकलीफ़ों से गुजरते हैं, और उन बहसियत इंसान के अल्लाह ताला उनसे मामला फरमाता है। बहसियत नबी के मामला फरमाता है जब लोगों को हिदायत देनी है, लोगों को रहनवाई करनी है, और उनके खुद अपने ज़ाती मामलात में इंसानों के साथ मामला फरमाता है। आपने देखा कैसे यूनुस का वाकया, अय्यूब का वाकया, और इस तरह और अंबिया का, मुख्तलिफ अंबिया का जिन पर जिनमें कोई ऐसी खसूसी बात पैदा हुई उनका जिक्र है। लेकिन बुनियादी चीज़ क्या है, तौहीद है, तौहीद से बात शुरू होती है। नबी तौहीद समझा, तौहीद पर जोर देता है कि शिर्क न हो, यानी अल्लाह ताला के सिफात में किसी को शरीक न किया जाए। अल्लाह ताला के जो सिफात हैं, जो अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक़ रखती हैं, वो खालिक है, वो रब है, वो कादिर है और गालिब है, तो इसमें समझना ही कोई और भी ये खसूसियत रखता है ये शिर्क हो जाएगा। अब ये जो दूसरों को दूसरे से मांगते हैं, समझते हैं कि हमारा वो काम कर देंगे जो इंसान नहीं कर सकता, बस यही तो शिर्क बन जाता है। वरना वो खुद मानते थे कि ज़मीन आसमान को पैदा करने वाला खुदा है और ये बारिश देने वाला खुदा है, इतना मानते थे। लेकिन ये कि खुदा सब नहीं करता, उसने छोटों को लगा दिया है और वो छोटों से वहाँ काम चल जाएगा। वो दुनिया का जो निज़ाम है उसको देखते हैं कि जो बादशाह है उसको कुछ नहीं करना पड़ता, उसके जो अफसर हैं वो करते हैं, अफसरों को तकसीम कर रखा है, आपको ज़रूरत है अफसर से मिलिए और अपना काम चला लिए, बादशाह तक जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये इस जहन को इसका रद्द है, कोई बदला है नहीं, अल्लाह ताला हर चीज़ अल्लाह ताला करता है, कोई दूसरा नहीं उसमें शरीक हो सकता, कोई जिंदा नहीं कर सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई रिस्क नहीं दे सकता, सब अल्लाह करता है। और तो असल चीज़ तौहीद है और उस तौहीद को अम्बिया अलैहिस्सलाम ने बुनियाद बनाकर और काम किया। और अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गलती हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने माफ़ किया उनके तौबा करने पर, लेकिन ये कि फिर ये कि उनकी नस्ल में लोग गलती करेंगे लिहाजा अब छांटा जाएगा लोगों को, जो नेक हैं जो गलती न करेंगे उनको अल्लाह अलग रखेगा और जो गलती करेंगे नाफरमानी करेंगे तो उनको अलग रखेगा। और दोनों के लिए अल्लाह ने अंजाम अलग अलग रखा है। नेकी करने वाले जो हैं जो अल्लाह के कहने पर चलेंगे, अल्लाह के हुक्म को बजा लाएंगे और अपनी तरफ से कोई तब्दीली नहीं करेंगे और अल्लाह ताला के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं करेंगे, उनको तो अल्लाह ताला जन्नत, उनके लिए अल्लाह ने वहाँ जन्नत रखी है और वहाँ की नेमतें रखी हैं, और जो लोग इसके खिलाफ करेंगे उनको अल्लाह ताला सजा देगा, उनके लिए जहन्नम रखी है, लेकिन ये आखिरत में रखी है। इसलिए दुनिया की जिंदगी में अगर होगा तो मौका गोया कि पूरा इंसान को नहीं मिलेगा। दुनिया की जिंदगी में अल्लाह ने इंसान को मौका दिया है कि अगर उससे गलती होती है तो बाद में तलाफी कर ले उसको, ताकि आखिरत में जब वो जाएगा तो वहाँ जाने के बाद फिर वो कोई इस्लाह नहीं कर सकता और कोई तब्दीली नहीं ला सकता। और इसलिए ईमान के लिए, ईमान का अज्जा में ये है कि तौहीद है, रिसालत है और फरिश्ते हैं और आखिरत है। और आखिरत का मामला ये है कि आखिरत का और नबियों का जो पैगाम है ये ज़्यादातर इल्म गैब से ताल्लुक रखता है। इल्म दो तरह के हैं, एक इल्म वो है कि जो इंसान अपने हवास से अपनी ताकत से हासिल करता है, यानी देखकर या सुनकर या पढ़कर या पूछकर, वो इल्म है जिस पर हम पूरा अपना निज़ाम चल रहा है दुनिया का। और एक इल्म वो है कि जो हम अपने आँखों से या अपने अकल से अपने उससे मुशाहदे से नहीं हासिल कर सकते, वो नबी हमको बताता है, अल्लाह ताला की तरफ से हमको वो इल्म दिया जाता है। उस इल्म से ताल्लुक़ है आखरत का और फरिश्तों का, फरिश्तों को मानना, आखरत को मानना और तकदीर को मानना, ये सब ईमानियात हैं, ईमान की जुज हैं। तो और आखरत का मामला ये है कि आखरत पर सारा इंसार सारा अंजाम आखरत है, आखरत में सारा हिसाब किताब होगा। लेकिन आखरत कब आएगी, कैसे आएगी, तो बहुत हौलनाक तरीके से आएगी। इसलिए आखरत को आदमी मजाक न समझे, ये ना समझो कि ऐसे देखा जाएगा, नहीं, आखरत का आखरत इस तरह आएगी कि एक बहुत बड़ा हादसा मालूम होगा, इस तरह के आदमी अकल काम नहीं करेगी और बदहवास हो जाएगा, आदमी बिल्कुल अपने उसमें हवास में नहीं रहेगा, इतनी ज़बरदस्त धमाके के साथ आखरत आएगी। उसी को अल्लाह ताला ने इस सूरे में उसका जिक्र ख़ास तौर पर किया है कि क़यामत किस तरह आएगी। तुम क़यामत को मामूली चीज़ न समझो, तुमको क़यामत से डराया जाता है कि देखो अच्छे आमाल इख्तियार करो वरना तुम क़यामत में मुसीबत में पड़ोगे, और क़यामत में फिर तलाफी नहीं कर सकते। तो फ़र्क ये है इस दुनिया की ज़िंदगी और आखरत की ज़िंदगी में, कि दुनिया की ज़िंदगी में हम तलाफी कर सकते हैं, गुनाह हो जाए तौबा करके हम अल्लाह से माफ़ी हासिल कर सकते हैं, उसका असर वाकिल हो जाएगा। लेकिन क़यामत के बाद, क़यामत आने के बाद फिर ये कुछ नहीं हो सकता, वहाँ जो करके गए हैं, जो लेके गए हैं, उसी के मुताबिक मामला होगा, जन्नत या जहन्नम, सजा या जजा। तो इसलिए क़यामत को मामूली चीज़ नहीं समझना चाहिए और डरते रहना चाहिए कि क़यामत हमें किस हाल में पेश आएगी। तो उसको अल्लाह ताला ने उसका नक्शा जो बयान फरमाया है वो वाकई वो दिनों को डरा देने वाला है। फरमाया या अय्युह अन्नास तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लत अस्सा'ति शय्उन अज़ीम, ए लोगो अपने नफ्स से डरो, तकवा अख्तियार करो। तकवा क्या चीज़ है? तकवा कहते हैं एहतियात को, यानी खतरे से बचने की कोशिश करना, ये है तकवा, जिसकी तशरीह की गई है और अवान की है कि कांटे हैं रास्ते में तो आप बच के चलेंगे कि कहाँ का पैर कांटे पर न पड़े। तो ये आपकी जो ये एहतियात है बच के चलना, यही तकवा है। तो ये आखरत के लिहाज से तकवा, यानी हम अपनी ज़िंदगी में जो भी अमल कर रहे हैं सोच समझ के और देखभाल का अमल करें कि अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो नहीं, हम फलां से मामला कर रहे हैं तो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ तो नहीं होगा, हम फलां चीज़ खा रहे हैं ये चीज़ अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ तो नहीं होगी, इसलिए कि अल्लाह ताला ने सारी चीज़ों को बताई, हिदायत दे दी। तो हम ये देखभाल कर ज़िंदगी गुजारें कि हमारा कोई अमल अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ ना हो, ये एहतियात जो है ये तकवा है। इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डरो, एहतियात करो, यानी अपने रब के मामले में وہ ایسا کام نہ کرو کہ جس سے تمہیں اس کی ناراضی ہو. اس کو ناراض کرو گے تو تمہیں آخرت میں مصیبت جھیلنی پڑے گی. ان زلزلہ تو ساتھ شہ العظیم جو قیامت کا جو زلزلہ آئے گا, زلزلے کی صورت میں قیامت آئے گی تو شہ العظیم بہت عظیم چیز ہوگی, بہت عظیم چیز ہوگی. اس کو تم آسانی سے تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی سخت اور دہشت ناک وہ صورت عالم ہوگی. ایسا زلزلہ آئے گا کہ پوری دنیا ٹوٹ کے ختم ہو جائے گی, ٹوٹ کے اور بکھر جائے گی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے ہوں گے, ان میں وزن ختم ہو جائے گا. اور فرمایا کہ اتنا سخت دہشت ناک واقعہ پیش آئے گا کہ یوم ترونہا تذل کل مرضعت عما ارضعت, یہ تم دیکھو گے اس کو کہ اس کے اثر سے دودھ پلانے والی بھول جائے گی اس بات کو کہ ہم دودھ پلانا ہے یا دودھ ہم پلا رہے ہیں. بچے کو بالکل نظر انداز کر دے گی, ایسی دہشت میں مبتلا ہوگی کہ دودھ پلانا اس کو بھول جائے گی. اما ارضعت اتضاؤ کل ذات حمل حملہ, اور جو حمل ہوگا وہ حمل ساقط ہو جائے گا دہشت میں, اسقاط ہو جائے گا عورتوں کا. اتر اللہ سکارا, اور لوگوں کا یہ حال ہوگا, تم دیکھو گے لوگوں کو کہ مدہوش ہوں گے, جیسے نشے میں ہیں, کچھ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, بالکل دماغ کام نہیں کر رہا ہے, عقل کام نہیں کر رہی ہے. وہاں ہم بھی سکارا اور وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ نشہ ہوگا, وہ گھبراہٹ اور وہ بدحواسی ہوگی, جو معلوم ہوگا جیسے نشے میں ہیں. ولیکن عذاب اللہ شدید, اس میں اللہ کا عذاب, اللہ کی طرف سے جو مصیبت آئی ہوگی وہ بڑی سخت ہوگی. اس کی وجہ سے ان کا دماغ بالکل معطل ہو جائے گا, ان کے حواس قابو میں نہیں رہیں گے, ایسی دہشتناک صورتحال پیدا ہوگی. جب سور پھونکی جائے گی, اس سور کے پھونکنے سے اس کی آواز سے سارا انقلاب آ جائے گا. فرمایا امن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید, لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ یعنی اتنا خطرناک مستقبل سامنے آنے والا ہے کہ آدمی اس کو سوچ کر اپنے کو درست کر لے, سوچ کر احتیاط شروع کر دے کہ بھائی اللہ ہمیں اس خطرے سے بچائے. اس دہشت کے بعد پھر حساب کتاب ہوگا. فرمایا لیکن لوگوں کا حال کیا ہے, لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے معاملے میں وہ بحث کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ماننے میں, اللہ کی عظمت کو تسلیم کرنے میں کہ وہ قادر مطلق ہے, وہ اس کی ذات بہت اعلیٰ ہے, وہ اکبر ہے, اعلیٰ ہے, اس کو ماننے میں جھگڑا کرتے ہیں اور دلیل مانگتے ہیں. اور فرمایا بغیر علم اور واقعیت کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں, یعنی ان کو حقائق معلوم نہیں, بس اندازے سے بحث کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حدانیت کو ماننے میں بحث کرتے ہیں. وہ یتبعوا کل شیطانی مرید, اور وہ پیروی کرتے ہیں بہت شریر شیطانوں. شیطان جو انسان کے اندر گھس جاتا ہے, انسان کے دل میں اتر جاتا ہے اور وہاں جا کے وسوسہ پیدا کرتا ہے. شیطان نے کہا وسوسہ پیدا کرنا ہے, تو بس اس کے وسوسے میں پڑ جاتے ہیں, اس کی پیروی کرتے ہیں. ہر ایسے شیطان کی جو بڑا سرکش ہے, سرکش شیطانوں کی پیروی کرتے ہیں, یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں شرک کے سلسلے میں کہ جو ویسے بڑا شیطان, جو سرکش شیطان ہے وہ کرے گا, اس کی پیروی کرتے ہیں. فرمایا کتب علیہ انہ من تولیٰ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر, اللہ کے یہاں یہ طے کر دیا گیا ہے, لکھ دیا گیا ہے اس کے متعلق, ایسے آدمی کے متعلق جو شیطان کی پیروی کرتا ہے, کہ جو بھی اس کا ساتھ دے گا, جو اس کو دوست بنے گا اس شیطان کا, یعنی شیطان کی باتوں کو قبول کرے گا, مانے گا, فانہ یضلہ, اور وہ شیطان اس کو گمراہی میں ڈال دے گا اور راستہ دکھائے گا, کہے گا جہنم کے عذاب کا راستہ دکھائے گا, یعنی اس راستے پہ لے جائے گا, उसको ऐसे रास्ते में डाल देगा कि जो जहन्नम रास्ता जहन्नम में ले जाता है और सख्त आग का आजाब आजाब से उसको सौंपना पड़ेगा। फरमाया कि अगर तुम्हें कयामत के सिलसिले में तरद्दुद शुबा होता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो इस बात से समझो कि जो जात इस बात पर कादिर है कि एक पानी के एक धब्बे पानी के खसरे से अच्छा खासा जीता जाता जागता और साहिब अक्ल इंसान बन जाता है, जो 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 इतनी कुदरत रखता है कि 20 दरख्त बना दे। जो अल्लाह ही तआला तो करता है कि माँ के पेट से बच्चा तरक्की करके इंसान बनता है। फरमाया उसको तफसील फरमाया कि अगर तुम्हें शुबा है तो तुम ये देखो, अगर तुम्हें कयामत के आने पर शुबा है कि कयामत आएगी, तो तुम ये देखो कि अल्लाह ताला जो ये सब कर सकता है क्या कयामत नहीं ला सकता। और ये कि अल्लाह ताला की नाफरमानी पर क्या मुसीबत नहीं आ सकती, इसलिए वो कादिर है, उसकी नाफरमानी करोगे तो वो तुमको बड़ी से बड़ी सजा दे सकता है। और माया के ये देखो, इन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन, हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया, यानी तुम्हारी असल तो मिट्टी है, मिट्टी के जर्रों से हमने तुम्हारा आगाज किया। सुम्मा मिन नुत्फा, उसके बाद फिर पानी के चंद कतरे हैं, मिट्टी उसके बाद चंद कतरे पानी, और फिर उसके बाद बाकायदा लोथड़ा एक खून का, और फिर उसके बाद गोश्त की शक्ल में एक चीज बनी, जो पहले तो जो बाकायदा अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया, और वो भी उसमें था जो उसको अल्लाह ताला ने दूसरे तरीके से बनाया, लेकिन भाई ये न रखू नाम, इस तरीके से इंसान बना है। जो 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 जात ये सब कर सकती है उससे तुम डरते नहीं हो, और वो जब वो तुम्हें डरा रही है, तुम्हें बता रही है कि कयामत आएगी और तुम्हारा हिसाब किताब होगा, और कयामत किस तरह आएगी कि सब धारा निज़ाम टूट जाएगा, जमीन फट जाएगी और अंदर के अलावा सारा बाहर निकल आएगा, और पहाड़ जो है वो बेवजन हो जाएंगे, गर्द गुबार की तरह वो फिजा में वो गए होंगे, और इंसान इंसान पैदा किया जाएगा दोबारा, और इंसान सब देखेगा तो उसकी क्या हालत बनेगी। तो अल्लाह की ज़ात जो ये सब कर सकती है, जो इस तरह पैदा कर सकती है, उससे डरना चाहिए कि कयामत आएगी तो हमारा जो हशर होगा, सिवाय खुदा के कोई हमारी मदद करने वाला नहीं होगा, वहाँ कोई हमारी मदद नहीं कर सकेगा उस मुसीबत में, उस हौलनाक आफत के सामने इंसान बिल्कुल बेबस होगा, और सिवाय अल्लाह की रहमत के और कोई उसका सहारा नहीं होगा, और अल्लाह ताला कादिर है इन चीज़ों पर, इसलिए डरना चाहिए। फरमाया उनको फिर रहम मानशा, उसके बाद हम ये करते हैं कि रहम मादर में जो चीज़ हम चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा उसमें हम बना देते हैं। रहम मादर में हम न इसको ये नुस्खे को अगर हम उसमें तरक्की न दें तो नुस्खा बेकार हो जाएगा, आदमी नींद पैदा होगा, होता है कि आदमी इंतजार में रहता है औलाद नहीं होती, वो कोशिश भी करता है औलाद नहीं होती, और अल्लाह ताला चाहता है तो खूब औलाद दे देता है। तो फरमाया कि हम जो उसमें करार देते हैं रहम माजर में मां नशा, जो हम चाहते हैं इला अजली मुसम्मा, एक मुद्दत तक जो मुकर्रर है, तुम नुखरिजुकुम तिफलन, हम तुमको निकालते हैं एक बच्चे की शक्ल में, नुखरिजुकुम तिफलन, हम तुमको निकालते हैं रहम मादर से एक बच्चे की शक्ल में, तुम तब लोग अशुद्धकुम, फिर तुमको मौका देते हैं और तुम्हारे लिए इंतजाम करते हैं कि तुम अपने जवानी तक अपनी ताकत तक पहुँचो, कि तुम में ताकत पैदा हो जाए, जैसे जवानों में ताकत होती है वो पैदा हो जाए। उमिन को मैं तोहफा उमिन को मयूरत बेला आवेद, फिर उसमें हम ये हमारी तरफ से ये फैसला होता है कि कौन जल्दी मर जाएगा मरेगा और कौन देर में मरेगा। बाल वो हैं जो जल्दी वफात पा जाते हैं, वफात दे दी जाती है उनको, और उनमें ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत बहुत ही सख्त रवील उम्र तक पहुंचाया जाता है, यानी ऐसी उम्र तक पहुंचाए जाते हैं कि वो उनके होश उनके खराब हो जाते हैं, उनको न ठीक सुनाई देता है, न उनकी समझ ठीक से आता है, न वो अपने जरूरियात पूरी कर सकते हैं। बहुत माजूर उम्र तक पहुंचा देते हैं। ये हम करते हैं, जिसको चाहा कम उम्र तक रखा, जिसको चाहा लंबी उम्र दे दी, ताकि ये देखें कि कौन क्या अमल करता है। लिखा जा रहा हूँ बाद इल्म शया, ऐसी उम्र तक पहुंचा देते हैं कि वो इल्म रखने के बावजूद वो इल्म से बिल्कुल फारिग हो जाता है, कुछ नहीं जानता, यानी वो ऐसा ना समझ हो जाता है जैसे बच्चे जो बहुत ज्यादा उम्र हो जाती है, ताकि वो न जाने। इल्म रखने के बाद ये मरहला आ जाता है कि वो किसी चीज का इल्म नहीं रखता। जैसे इंसान को हम पैदा करते हैं उस तरह जमीन पर भी हमारा ये अमल होता है कि जमीन बिल्कुल खुश्क है, पत्थर की तरह है, कि उसमें कोई उम्मीद नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं हासिल, और मुर्दा जमीन है। फैजा अंदलना, जब उसको हम पानी नाजिल करते हैं बादलों से, तो वही जमीन जो बिल्कुल मुर्दा मालूम हो रही थी उसमें थरथराहट पैदा हो जाती है, एहतज़ाज़, उसमें थरथरा हरकत पैदा हो जाती है, वो रबत, और उसमें वो नू पैदा हो जाता है, वो नू पैदा होता है, वो आम बदत बिल्कुल वही, और वो ऐसी चीजें पैदा करती है जमीन के बड़ी पुर रौनक और मुतनवे किस्म की चीजें जमीन पैदा करती है, वही जमीन जो बिल्कुल मुर्दा मालूम हो रही थी। ये सब हम करते हैं, इसको तुम लोग देखते हो, उसके बाद भी हमारी बात को नहीं मानते, उसके बाद भी तुम शिर्क में मुबतला होते हो, उसके बाद भी तुम आजादाना जिंदगी गुजार रहे हो, मस्त हो, तुम्हारी मस्ती किस बात पर है? जब तुम्हें कयामत का सामना करना है, हौलनाक कयामत का सामना करना है, तो ऐसा आदमी के जिसको मालूम हो कि साल भर के बाद हम पर कोई बहुत मुसीबत आने वाली है, वो चैन की जिंदगी गुजारेगा? अगर मालूम हो कि कुछ अरसे के बाद हम पर फला हादसा पेश आने वाला है, आदमी न खाने में मजा आएगा, उसको न पीने में मजा आएगा, हर वक्त दिमाग में रहेगा क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा? तो इतनी हौलनाक चीज तुम्हें पेश आने वाली है, उसके बाद ही तुम बहस करते हो और अपने अल्लाह ताला की तौहीद के मामले में तुम शुबा करते हो, और ये नहीं देखते कि अल्लाह ताला किस तरह चीजों को पैदा करता है, किस तरह चीजों के अंदर नमू पैदा करता है, तरक्की अता फरमाता है। अल्लाहता और बात यह है मानने की कि अल्लाह ताला बिल्कुल हकीकत है, अल्लाह की जात जो है हकीकत है, वो उसमें कोई तरद्दुद शुबे की बात नहीं है, और ये कि वही जिंदा करता है, वो मुर्दों को जिंदा करेगा, और यानी मरने वाला हमेशा नहीं मरेगा, मरने के बाद उसको अल्लाह ताला उठाएगा हिसाब किताब के लिए। वअन्नहु अला कुल्लि शयइन क़दीर, और ये हकीकत है कि अल्लाह ताला हर चीज पर क़ादिर है। अला कुल्लि शयइन क़दीर, अल्लाह ताला के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। जो नबी तुमको बताते हैं उसको तुम्हें मानना चाहिए। अल्लाह ताला हर चीज पर क़ादिर है, इसलिए कि अल्लाह को वो कुव्वत हासिल है जो किसी को हासिल नहीं। और इस पर यकीन कर ले आदमी करना चाहिए कि कयामत आने वाली है, इसमें कोई शिबे की बात नहीं। तुम इत्मीनान की जिंदगी जो गुजारते हो, मस्त फिर रहे हो, तुम इस बात को समझ लो कि कयामत आने वाली है, कि तुम्हारा सारा ठाट यहीं रखा रह जाएगा, तुम यहाँ से कुछ लेके नहीं जाओगे सिवाय अमल के। लाफियाबर, ये अल्लाह ताला कब्रों से लोगों को निकालेगा, उनको जिंदा करेगा। इस बात को, इस हकीकत को मान लेना चाहिए। उमिन अन्नास मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैर इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर, और फरमाया कि लोगों में ऐसे लोग हैं कि जो अल्लाह ताला के मामले में झगड़ा करते हैं बगैर वाकफियत के, بغیر علم کے اور بغیر کسی رہنمائی کے, اور نہ ان کے پاس کوئی لکھی ہوئی چیز ہے, کوئی واضح کتاب ہے کہ جس کی بنا کرتے ہوں. ثانی آیت ہی عن سبیل اللہ, اور اپنے پہلو کو وہ موڑ لیتے ہیں یعنی غیر متوجہ ہو جاتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں. لہو پہ دنیا سے قیامت عذاب الحریق, ہم دنیا میں ان کو ذلیل کریں گے اور ان کو ہم قیامت کے روز مزہ چکھائیں گے سخت آگ کے عذاب کا. ذالک قدمت یداک وان اللہ علیہ وسلم العبید. اور یہ سب کیوں ہوگا؟ اس لیے تمہارے ہی ہاتھوں نے یہ انجام تمہارا بنایا ہے, تم نے اپنی بدعملی سے یہ کیا ہے. وان اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے. خود تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوگا جو تمہیں بھگتنا پڑے گا.